नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी
ये 1988 से 1990 के बीच लिखी गई थी, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग दो। और ये पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला है, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बिल्कुल बिल्कुल।
और पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था और वो चाहते थे कि ये जन जन तक पहुंचे।
हाँ, और हमारा आज का मकसद भी यही है कि पूज्य गुरुदेव के उस नजरिए को जरा समझें, जिसमें उन्होंने ये जो 20वीं सदी का अंत था और 21वीं सदी की शुरुआत, इसको एक बहुत बड़े मतलब महाक्रांति के काल की तरह देखा।
अच्छा।
हाँ, एक ऐसा समय जो भले ही भयानक मुश्किलों से भरा हो, पर वो ले जाएगा एक उज्जवल भविष्य की तरफ। ये अपने आप में एक गहरी बात है।
हाँ, वाकई में। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव ने उस समय, मतलब 80 के दशक के बिल्कुल आखिर में, दुनिया की जो हालत थी उसकी एक साफ तस्वीर खींची है। जैसे पर्यावरण का संकट कितना बढ़ रहा था, वो टाइम मैगजीन ने भी तो पृथ्वी को संकटग्रस्त ग्रह कहा था ना।
हाँ बिल्कुल, एंडेंजर्ड अर्थ, वो बहुत बड़ी बात थी उस समय।
हाँ, और बढ़ता प्रदूषण, जंगल कट रहे थे, ये सब बातें उन्होंने उठाई।
और देखिए, सिर्फ बाहर के संकट नहीं, उन्होंने अंदर की बात भी की, मतलब इंसानी मूल्यों में जो गिरावट आ रही थी, तनाव बढ़ रहा था, खुदगर्जी।
अच्छा।
इसे पूज्य गुरुदेव ने मानवीय दुर्बुद्धि कहा, साफ कहा कि ये इंसान की अपनी नासमझी है, अपनी अदूरदृष्टिता है।
मतलब समस्या बाहर से ज्यादा अंदर थी।
हाँ, ये हमारी अपनी कमियों का, हमारी सोच का नतीजा था।
लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी सारी परेशानियां गिनाने के बाद भी पूज्य गुरुदेव बिल्कुल निराश नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत जोर देकर कहा कि निराशा को तो हटना ही होगा, उसकी कोई जगह नहीं है।
ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
क्योंकि उनका विश्वास बहुत गहरा था इंसान की हिम्मत में, इंसान की सकारात्मक सोच में, कि उसमें भविष्य बदलने की ताकत है। उन्होंने इतिहास से, पुराणों से मिसालें भी दी, जैसे हनुमान जी का वो समुद्र लांघना या ग्वालों का गोवर्धन उठा लेना।
हाँ, हाँ।
ये सब क्या दिखाता है? कि पक्का इरादा हो, भरोसा हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है।
तो पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी ये थी कि ये जो समय है, जिसे उन्होंने युग संधि कहा,
जी 20वीं सदी का अंत और 21वीं शुरुआत,
हाँ, ये भले ही मुश्किलों भरा हो, कष्ट देने वाला हो, पर ये जरूरी तौर पर एक बेहतर भविष्य लाएगा।
बिल्कुल, जैसे पतझड़ के बाद ही बाहर आती है, पुरानी जो अवांछनीय चीजें हैं वो खत्म होंगी और नई अच्छी चीजों का सृजन होगा, एक महाक्रांति।
और इस बदलाव को लाएगा कौन, मतलब इसके पीछे की शक्तियां क्या होंगी?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ कुछ खास बातें बताई।
जैसे?
पहली, उन्होंने कहा चौथी शक्ति उभरेगी, जिसे उन्होंने नाम दिया प्रखर प्रतिभा।
प्रखर प्रतिभा, ये सामान्य बुद्धि से अलग है?
हाँ, बहुत अलग। ये सिर्फ तेज दिमाग या कोई हुनर नहीं है, ये वो प्रतिभा है जो आदर्शों के लिए जीती है, जिसमें लोक मंगल की, समाज की भलाई की भावना है, जो दूसरों का दर्द महसूस करे।
अच्छा, मतलब क्षमता के साथ संवेदना और उद्देश्य भी?
बिल्कुल सही, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं, उस काबिलियत का सही इस्तेमाल। दूसरा, उन्होंने कहा कि चार चरण वाला युग धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।
चार चरण वाला युग धर्म, ये क्या है?
ये चार कदम हैं। पहली, समझदारी, मतलब दूर तक सोचना, परिणामों को समझना। दूसरी, ईमानदारी, न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी आत्मा के प्रति सच्चाई। तीसरी, जिम्मेदारी, अपना और समाज का उत्तरदायित्व समझना और निभाना। और चौथी, बहादुरी, अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ खड़े होने का नैतिक साहस।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये चारों मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं।
बिल्कुल। और तीसरा तत्व भी बताया उन्होंने।
वो क्या?
सूर्य की भूमिका, सविता की।
सूर्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में?
वो तो है ही, लेकिन उससे भी आगे पूज्य गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक चेतना और प्रेरणा का भी स्रोत माना। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सविता की इस सूक्ष्म शक्ति का महत्व बढ़ेगा।
तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें, ये प्रखर प्रतिभा, ये युग धर्म के चार कदम, सविता की चेतना, ये सब मिलके समाज को कैसे बदलेंगे? क्या नजारा देखा था पूज्य गुरुदेव ने?
इसका सीधा मतलब था कि इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके व्यवहार में एक बुनियादी सकारात्मक बदलाव आएगा। व्यक्तिवाद मतलब सिर्फ मैं और मेरा वाली सोच कम होगी, सहयोग, सेवा और परमार्थ की भावना बढ़ेगी।
और सामाजिक स्तर पर?
सामाजिक स्तर पर समानता बढ़ेगी, स्त्री पुरुष की, जाति वगैरह की एकता का महत्व बढ़ेगा। और विज्ञान, विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक कामों के लिए होगा, एक दूसरे से होड़ करने की बजाय मिलकर काम करने के लिए।
पर क्या ये सब अपने आप हो जाएगा या इसमें हमें कुछ करना होगा?
नहीं नहीं, अपने आप नहीं। पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा कि ये महाकाल का संकल्पित विधान है, मतलब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, लेकिन इसमें मनुष्य की सक्रिय भागीदारी, उसकी अपनी कोशिश बहुत जरूरी है।
हमें खुद को बदलना होगा।
हाँ, खुद को भी और समाज को भी। उन्होंने उस समय जो पंचायत राज जैसे बदलाव हो रहे थे उन्हें इसी दिशा में एक छोटा शुरुआती कदम माना था कि शक्ति आम आदमी तक पहुंचे।
तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने दशकों पहले ही एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत आशावादी तस्वीर सामने रखी थी।
बिल्कुल।
कि 20वीं सदी की जो मुश्किलें हैं, जो मंथन चल रहा है, उसी से 21वीं सदी में एक नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत, एक उज्ज्वल भविष्य जन्म लेगा।
हाँ, और उसे रास्ता दिखाएगी ये प्रखर प्रतिभा और वो सार्वभौमिक मूल्य, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। और यहीं पर आज के लिए एक विचार करने वाला सवाल भी छोड़ जाते हैं
जी,
कि पूज्य गुरुदेव ने जिन बातों का जिक्र किया, ये प्रखर प्रतिभा और ये युग धर्म के सिद्धांत, उनके लिखे जाने के इतने साल बाद आज की दुनिया को देखते हुए, आज की चुनौतियों और अवसरों को देखते हुए, ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक लगते हैं? क्या आज हमें इनकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा महसूस होती है?